हरे कृष्णा।
दास भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। बहुत लोगों से प्रार्थना थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, और जो लोग खड़े हैं उनसे भी प्रार्थना है कि दर्शन जिन्होंने कर लिए वो बैठ सकते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका हम लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये स्वागत आपको लग रहा होगा केवल शाब्दिक है। स्वागत कर रहे हैं, विशेष कुछ तो किया नहीं, माला तो आपको पहनाई गई है, हमारे साथ क्या हुआ है। तो आपका स्वागत वास्तव में इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन लोगों का आध्यात्मिकता में रुचि होती है। ज्यादातर लोगों की समय रुचि इस समय टीवी ने कोई ना कोई टीवी सीरियल आ रहा होगा, या इस समय को लोग कहीं और बिताना चाहते हैं, अपने घर में, रिलेटिव्स के पास, कोई पार्टीज में, कोई किटीज में। लेकिन बहुत ही कम भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को जब भगवान की विशेष कृपा होती है उन लोगों को भक्तों का संग करने को मिलता है, मंदिर आने को मिलता है। और मंदिर आने में हमारी भी जो है हमारे मन में भी विचार रहता है कि हम मंदिर आएं तो यहां पर हमें मन की शांति मिले, हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। जो कृपा हमें भगवान के मंदिर में आके मिल सकती है वो कृपा हमें डिस्को या पब में जाकर नहीं मिल सकती, वहां पर कृपा नहीं मिलेगी। वहां क्या मिलेगी? वहां पर माया की कृपा मिलेगी। उन जगहों पर जाने से व्यक्ति को भगवान का स्मरण नहीं होगा। कभी देखें कि कोई व्यक्ति इस तरह के कपड़ों में पब में बैठे शांति के लिए? नहीं। तो उन सब जगहों के लिए एक हर एक चीज के लिए एक जगह है। तो जो लोग अपने जीवन में प्रयास करते हैं, कि जो लोग वास्तव में भूले हुए जीवन का उद्देश्य, या जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम लोग क्यों पैदा हुए हैं, हमें करना क्या है, और जीवन का असली सुख की शांति मिलेगी कहां, जिन्हें नहीं पता, वो सब लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रयास कर रहे हैं उस सुख को, उस शांति को प्राप्त करने। हम लोगों से कितने लोग ढूंढ रहे हैं सुख? हाथ खड़ा करें। लगभग सभी लोग सुख ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सुख बाहर नहीं है, किसी के पास नहीं है सुख, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं। और ये सच्चाई है, हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान रख सकते हैं लेकिन हर समय के लिए नहीं, ठीक है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमको खुश कर देती हैं, और कुछ ऐसी आती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें बताया गया, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मन, जो तू इस भौतिक जगत में कभी सुख महसूस करता है, कभी दुख महसूस करता है, और हमारा मन सुख और दुख क्यों महसूस करता है? क्योंकि कुछ चीजें इसके मन के, हमारे मन के फेवर में होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम सुखी होते हैं, और जब विपरीत होती हैं तो हम लोग दुखी होते हैं। तो इस प्रकार हमारा मन बचपन से लेकर अंतिम समय तक डिस्टर्ब रहता है। तो बड़ा छोटा सा सेंटेंस है कि बचपन से लेकर अंतिम समय तक, लेकिन अगर इस पर ध्यान से गौर करना शुरू करें तो हम लोग जैसे जब व्यक्ति बताते हैं शास्त्रों के हिसाब से, श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद में 31वें अध्याय में कपिल मुनि अपनी माता देहूति को बता रहे हैं कि जब शिशु बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, वो छोटा सा शिशु किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार उसका हृदय बनता है, किस प्रकार उसके हाथ पैर माता के गर्भ में विकसित होते हैं, और फिर किस प्रकार धीरे धीरे उसका शरीर मुड़ता जाता है। महीने के हिसाब से बताया कि किस महीने में क्या होता है। और वहां पर उसको करवट नहीं बदलने की जगह होती। और जिस प्रकार हम लोग यहां बैठे हैं, ये लेक्चर अगर एक घंटे से ऊपर हो जाएगा तो हमारी पोजीशन चेंज होने की, अभी थोड़ी देर में हम लोग टांगे चेंज करेंगे, बदलेंगे, बैठा नहीं जाता, दर्दें होने शुरू हो जाती शरीर में। रात को जो सोते भी हैं तो ये नहीं कि जिस तरह सोए सुबह वैसे उठे, नहीं, करवट बदलते रहते, क्योंकि कुछ समय के बाद शरीर दर्द होने लगता है। अब सोचिए, छोटा सा बच्चा 9 महीने तक माता के गर्भ में जहां पे अंधेरा है और ठीक प्रकार से व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर सकता, एक ही तरह से लेटा हुआ है, और उसमें भी ऐसा नहीं कि टांगे हाथ पैर खोल के ऐसे लेटे, सारा जहां हमारा नहीं, कैसे लेटा है, हाथों को एकदम अंदर किए, टांगे बिल्कुल मोड़ी हुई, सर बिल्कुल उल्टा नीचे की तरफ। अब हम भूल चुके हैं ना, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, ये सब हमारे साथ हुआ है 9 महीने तक माता के गर्भ में, और उसी छोटी सी कोठरी में हम लोग यूरिन भी वहीं पास करते हैं, स्टूल भी वहीं पास करते हैं, मल मूत्र वहीं त्यागते हैं। आज अटैच बाथरूम है हमारे पास, लेकिन फिर भी बाथरूम अलग है, रूम अलग है, नहीं, दरवाजा बंद रखते हैं, क्यों, क्योंकि स्मेल किसी को ठीक नहीं लगती। लेकिन वो छोटा बच्चा वहीं पर मलमूत्र त्याग रहा है और वहीं पर बहुत से कीटाणु जर्म्स जो है पैदा हो रहे हैं, बैक्टीरियस, और वो काट रहे हैं बच्चे के शरीर पर। और ऐसे समय पे बताया जाता है जब महिला गर्भवती होती है तो उसको खट्टा खाने का मन करता है, सुना, तो जब ऊपर से एक तो बच्चे के शरीर पर क्या है, कई जगहों पर घाव हो गए काट काट कर, और ऊपर से नींबू या कोई खट्टी या मिर्च वाली चीजें जो ऊपर से डाली जाए तो बच्चा और कड़हाता है, उसको और दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन माता को आनंद आ रहा है, किस चीज में, वो जीव को टेस्ट देने में, डायरेक्ट वो बच्चे की हालत नीचे खड़ा। और फिर बताया जाता है 7वें महीने में या उसके बाद एक बार भगवान उस बच्चे पे ऐसी कृपा करते हैं जिससे कि उस बच्चे को अपने लगभग 100 पिछले जन्म याद आ जाते हैं। इन 100 जन्मों में वो ये देख पाता है कि मैं इन 100 जन्मों में किस किस योनि में गया था और मैं क्या क्या करता था। अपनी उन स्थिति को देखकर वो कांप जाता डर के मारे और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं फिर से अब एक और गर्भ में आ चुका हूं और अब बाहर जाने वाला हूं। भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रही ले तुम्हें अविद्यार धारे। वो छोटा सा बच्चा कहता है, हे भगवान, खूब प्रार्थना करता है, मुझे इस जगह से बाहर निकालो, मैंने देख लिया कि कहां कहां मैं गया था, क्या क्या मैंने किया, तो मुझे अब बाहर निकालो, मैं क्या करूंगा। भजी बो बलि ऐसे ऐसे बोला कि मैं आपका भजन करूंगा जैसे ही संसार में आऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे काम क्या है, ये जो आपने मुझे 100 जन्म दिखाए बस उसको देखकर ही मैं कांप गया कि कत नहीं कहां कहां गया, क्या क्या किया, आहार निद्रा भय मैथुन कर करके मैंने जीवन बिताया, फिर मैंने शरीर त्यागा, फिर दूसरे शरीर में गया, फिर किसी माता के गर्भ में ट्रांसफर हुआ, फिर वहां से बाहर आया, फिर वो इन 4 कामों को किया, अब मैं फिर तैयार हूं एक फिर जन्म लेने के लिए, तो मैं आपका भजन करूंगा। और जब उसको एयर प्रेशर से जब वो बाहर आता है, रोता बिलकता, आपने देखा कि बच्चा हंसता हुआ रहा नहीं, इतने कष्ट थे उसको अंदर, वो जैसे बाहर आता है और उस संघर्ष के दौरान उसकी सारी याददाश्त जो सोच जन उसको याद रहते सब खत्म। भगवान ने कृपा कर दी, नहीं तो बाहर आके तो पागल हो जाता हूं। लोग कहते पागल पैदा हो गया हमारे घर में, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, कह रहे मम्मी मेरी ये नहीं है, मेरी मम्मी वो है, नहीं वो नहीं है, चार पैर वाली है, नहीं 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 उड़ने वाली मेरी मम्मी है। ठीक है भगवान क्या है, क्या ये है ना, तो भगवान भुला देते हैं उसको। तो इस प्रकार का कष्टमय जीवन, दुखमय जीवन अब समाप्त नहीं, ये तो ट्रेलर था, ये तो सैंपल था, ये सैंपल था उस जगत में आने से पहले का, जो कि दुखों का सागर है। भगवान ने कहा है दुखालया अशाश्वतम, ये जो संसार है ये दुखों का घर है, कष्टों का घर है, समस्याओं का घर है। तो वो बच्चा अभी उस जगह पे आ गया, बाहर आ गया, और अब छोटा सा शिशु लेटा हुआ है, उसके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, बोल नहीं सकता वो, क्या मम्मी मेरे पेट में दर्द है, नहीं बोल सकता। बोल सकता क्या पैदा होते, अगर उसके पेट में दर्द है तो कैसे बताएगा, उसको पता ही नहीं क्या करना, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके पेट में दर्द है, पता ही नहीं चलेगा, कैसे बताएगा वो रोएगा, जोर जोर से रोएगा वो, मां को क्या लगेगा, भूखा है मेरा बेटा, भूखा है, उसको दूध पिलाया जाए, उसका पेट भर गया फिर रो रहा है वो, मां को क्या लगेगा, ये अभी भी भूखा है, फिर उसको दूध पिलाया जाएगा। आप कभी आपको जो पेट भर के खाना खिलाया जाए, फिर कहें पूछे एक चपाती हो, अब नहीं और नहीं खा सकता मैं, तो एक चपाती हो आप खा सकते हो, बच्चे की हालत में कुछ मना नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, और उसको दुख और कष्ट हो रहे हैं, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, करवट बदलना चाहता है इसलिए रो रहा है क्योंकि बच्चा मुड़ भी नहीं सकता, थक गया वो लेटे लेटे, लेकिन फिर इसको दूध पिला दिया जाता है। वो कहते क्या टॉर्चर किया जा रहा है मेरे साथ, और इस प्रकार उसका जीवन आगे बढ़ता है, छोटा सा और थोड़ा सा और बड़ा होता है, बोलना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीमारियां खत्म हो गई, जन्म के कष्टों के बाद बचपन से बीमारियां लग जाती हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो बचपन में बीमार हुए, हाथ खड़ा करो, और वो सारे बीमार हुए, खूब खतरनाक बीमार होते हैं, एक बार तो तारे याद आ जाते घर वालों को, है ना, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए जाते हैं, खूब प्रार्थनाएं की जाती हैं, और फिर इसके अलावा थोड़ा सा और बड़ा होता है, अब कौन से कष्ट होंगे उसको, शारीरिक हो गए, अभी और कष्ट बढ़ते हैं उसके, क्या कि मम्मी इसको लेकर गई मार्केट में, उसको कोई खिलौना दिख गया, ठीक है उसे कोई दूसरी चीज पसंद आ गई, तो कहते हैं मुझे चाहिए, मां कहते नहीं, क्या करता है बच्चा, रोता है, मां फिर भी लेकर नहीं देती, फिर क्या करता है बच्चा, सड़क पे लेट जाता है, उसको गोदी में उठाया जाता, चल बच्चे को गोदी में उठाते हैं, तो चलेगा नहीं सड़क पर लेट जाएगा, लेकिन बच्चे ने तो बचपन से आपने फिल्म दिखाई है उसको, अक्षय कुमार की, अमिताभ बच्चन की, डिशुम डिशुम वाली, तो उसको मुट्ठी बनाना भी आती है, और जोर से जड़ता है मां के या पिता जो भी उठाता उसको, कहता ये कौन है भाई, क्या है, और उसके हाथ में उसकी मुट्ठी बहुत मजबूत होती है, बाल पकड़ लेता कई बार, पूरा मेकअप खराब कर देता माता का, है ना, कि आपने पार्लर में जाके जो पैसे खर्चे मुझे खिलौना नहीं लेके दे रहे, अभी देख, समझ पा रहे, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और वो दुखी होता है, परेशान होता है, रोता है, उसको लगता है ये मेरे दुश्मन है जो मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे, कभी कभार इच्छा पूरी होती है तो खुश हो जाता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती फिर दुखी रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है, फिर जबरदस्ती उसकी इच्छा के बगैर, वो चाहता नहीं है लेकिन फिर भी इसको भेजा जाता है कहां, स्कूल, मेरा बेटा स्कूल जाएगा, अच्छा बेटा, राजा बेटा, वो जाना चाहता स्कूल, उसकी इच्छा नहीं है, उसके मन के विरुद्ध उसको स्कूल भेजा जा रहा है। स्कूल में नाना प्रकार के विद्यार्थी, कोई कुछ मारता है, कोई कुछ मारता है, कोई शर्ट खराब कर देता है, वो टीचर के पास जाता है, टीचर मार देती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बचपन से उसके जो है कष्ट, इस प्रकार हर स्टेज पर कष्ट उसको सहने पड़ते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, एग्जामिनेशन का डर रहता है, मम्मी एग्जाम आ रहे हैं, मंदिर कब चलोगे? बेटा मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में मंदिर क्यों याद आता है? है ना, क्योंकि शायद भगवान मेरी मान जाए एग्जाम के टाइम पर। तो एग्जाम का डर, टीचर्स का डर, कंपटीशन इतना है उसमें पीछे रहने का डर, माता पिता का प्रेशर इतना है, कौन सी पोजीशन चाहिए हर माता पिता को बच्चे की, माय गॉड, सब कुछ फंस चाहिए, कितना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। सचिन तेंदुलकर को क्या प्रेशर होगा अपने 100वीं शतक मारने में, जो एक छोटे बच्चे को स्कूल में एग्जाम देने में होता है, ऐसे ही कुछ। सचिन का तो क्या है, चलो नहीं बना पाया इस बार, अगली बार बना लेगा, अगली बार नहीं बनाया फिर बना लेगा, ठीक है ना। वो बच्चा तो फेल हो गया तो उसका तो जीवन खराब है ना जी, तो बच्चे की स्थिति और खराब होती है। फर्स्ट डिवीजन, माता पिता सुबह दोपहर शाम फर्स्ट ऑन है, फर्स्ट ऑन है, ट्यूशन में जाओ, ये करो, खबरदार टीवी देखा तो मत करो, ये सब पढ़ो, इतना प्रेशर एक छोटे से बच्चे पर। एक बार एक छोटा बच्चा अपने घर से बाहर निकला संडे के दिन बैग लेके, एक व्यक्ति ने पूछा, चीनू कहां जा रहे हो आज? कहते मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। छोटे से बच्चे की स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस, ओवर टाइम लगाया जा रहा है। हमें लगता है कि हम ही ओवर टाइम लगाते हैं, बच्चे भी ओवर टाइम लगा रहे हैं बचपन से। थोड़ा सा और बड़ा होता है, तेरह चौदह के बाद, अभी बचपन से जब आप पिटाई विटाई कर देते थे, अब उसको लगता है मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं नहीं सुनूंगा। अब बच्चे का दूसरा रूप सामने आता है, वो कहना नहीं मानता घर में, बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करता है स्कूल में, पकड़ा जाता है, टीचर्स कंप्लेन करती हैं, पेरेंट्स आते हैं, प्रभु जी प्रभु जी, हां जी क्या हुआ, प्रभु जी प्लीज हमारे बच्चे को कुछ समझाइए, इसे कुछ सिखाइए, ये हमारा कहना नहीं मानता, ये बहुत गलत सोसाइटी में उठने बैठने लगा है, गंदी आदतें पड़ रही हैं इसको। हमने पेरेंट्स की तरफ देखा ऊपर से नीचे, मैंने कहा आप किसको किसको लेकर आए हो मेरे पास, किसको सुधारने की बात कर रहे हो? कहते हैं अपने बच्चे को। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपको सुधरने की जरूरत है। हमें लगता है कि हमने जो कर लिया कर लिया, लेकिन हमारे घर में जो हमारा हमारी जो संतान है वो राजा हरिश्चंद्र होनी चाहिए, जबकि हम भूल जाते हैं कि जितनी इंडिपेंडेंस हमने यूज करी है उल्टे सीधे कामों में, बच्चा उसका 50 गुना आगे जाएगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा बड़े होने के बाद इतने कष्ट हो रहे हैं कि नहीं, शारीरिक कष्ट भी हो रहे हैं, बीमारियां भी लग रही हैं, और इस तरह का मेंटल प्रेशर भी इसके ऊपर पड़ रहा है। थोड़ा सा और बड़ा होता है 15-14-16-16 की उम्र में, उसकी सेंसेस डेवलप हो जाती हैं, अब वो इधर उधर देखना शुरू करता है, अब उसकी रातों की नींद उड़नी शुरू हो जाती है, वो फिल्मी गाने खाना शुरू कर देता है, मुझे रात को नींद ना आए, चैन ना आए, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता ने आईफोन दे दिया उसको, पूरी दुनिया उसके हाथ में, कंप्यूटर लैपटॉप सब उसके पास, पूरी दुनिया जानती है। उसके पिताजी को कुछ नहीं मालूम, उसकी माता को कुछ नहीं मालूम, बट उस बच्चे को पूरे वर्ल्ड में कई लोग जानते हैं। फेसबुक बैठा हो, और फिर कहीं ना कहीं दिल लगा बैठता है छोटी सी उम्र में, खाना भूल गया, नहाना भूल गया, एग्जाम है कुछ याद नहीं आ रहा है ना, चादर लेके, जैसे बच्चे पहले कॉमिक्स पढ़ते थे, अभी कमरा बंद करके वाई फोन देखता है। समझे कल्चर गैप कितनी जल्दी सब कुछ चेंज कर दिया। उसके बाद गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में अब आसानी से उपलब्ध है, क्या स्मोकिंग सिस्टम, अभी से एडिक्शन शुरू हो गई है बच्चों में। आपको जो चीजें 25 साल की उम्र के बाद पता चली थी उसको 14 साल में पता चल चुकी है, आपको पता चली थी उसने टेस्ट कर ली। हमने कहा नहीं, मेरा बच्चा है, इसको कहां जाना चाहिए, नर्क नहीं, जाएगा वहां जाए चाहेगा, है ना जी। अगर हम लोग ठीक ढंग से संस्कार नहीं देंगे, ठीक ढंग से शिक्षा नहीं देंगे और ठीक प्रकार से उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे धन का जो हम उसके लिए एकत्रित कर रहे हैं या आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, तो जो अभी करंट पीढ़ी है मेरी, करंट जनरेशन जो मेरी फर्स्ट जनरेशन है, उस धन का दुरुपयोग करके कहां जाएगी, गलत योनियों में जाएगी। और मैंने धन कितनी योनियों के लिए इकट्ठा किया था, 7 योनियों के लिए, तो कितनी जाएंगी, 7 जाएंगी। हमें लगता है कि हम कुछ करके जा रहे हैं अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा, कल को लोग ये ना बोलें कि इसने अपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं, किया ना, उसके लिए इंद्र तृप्ति की, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उसके लिए इतना सारा साधन छोड़ गए ताकि वो कर सके, पाप पूर्ण कार्यों में लग सके और अधिक से अधिक पाप कमा सके, और उन पाप को करने के बाद नरक इत्यादि जा सके। थोड़ा सा और बड़ा बच्चा होता है और फिर उन्हीं माता पिता को जिन्होंने सोचा था ये बनेगा या वो बनेगा, घर त्याग देता है या त्याग देती है, कई बार ऐसे भी सुनने में आता है। विवाह होता है और विवाह के बाद दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को आप सब अधिकतर लोग गृहस्थ जीवन में आप सब देखते हैं, जानते भी हैं, कई लोग उन प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं, कुछ जी चुके हैं, कुछ जीने वाले हैं, अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं घर से, सब परेशान हैं, दुखी हैं, किसी को लगता है मुझे हस्बैंड अच्छे नहीं मिले, किसी को लगता है मेरी वाइफ अच्छी नहीं लगी, मिली एक बार ऐसे ही हुआ, बताया था ना लास्ट टाइम भी, कि एक बार एक अपार्टमेंट में सब लोगों ने एक फंक्शन किया, क्यों किया फंक्शन, क्योंकि वो सब दुखी थे घर में, परेशान दुखी, और चाहते थे कि ये कैसे सुधार हो, हर एक के घर से कलेशों की आवाज, बर्तनों की आवाज, झगड़ों की आवाज रोज। लेकिन उनके अपार्टमेंट में एक परिवार ऐसा था जहां पर दरवाजे तो बंद रहता था लेकिन हंसने की आवाज आ रही थी, तो उनको लगा कि भाई इन्हीं से कुछ टिप्स ले लेते हैं कि हम भी कैसे हंसे अपने परिवारों में। तो उनको बुलाया गया, स्टेज लगाया गया, सुखी परिवार के लिए रखा गया ये प्रोग्राम। उनको बुलाया गया, हस्बैंड वाइफ को, कि बताइए आप कुछ टिप्स दीजिए हमें कि हम भी कैसे सुखी रहें, हम भी कैसे हंसते रहें हमेशा। तो बोलिए, कहते हमें समझ नहीं आया। कहते नहीं, हम लोग इसलिए आपको यहां खड़ा करें ताकि जो सुख आपके घर में है, जो शांति आपके घर में है, वैसी हमारे घर भी हो। कहते आपको कैसे लगा मेरे घर में सुख शांति? कहते आपके घर से रोज हंसने की आवाज आती है। कहते अच्छा वो, कहते कि क्या हुआ? कहते वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे परिवार भी आप जैसे ही हैं। हम दरवाजा बंद करके जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है तो ये चप्पल उठाती है, जोर से मुझे मारती है, मैं नीचे बैठ जाता हूं, नहीं लगता तो मैं हंसता हूं, जब मैं फेंक के मारता हूं उसको लग जाता तो फिर वो हंसती है। तो इसलिए हमारे घर में हंसने की आवाज आती है। तो कहते इसका मतलब सुखी कोई नहीं है? कहते कोई नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो जो ले भगवान का नाम। ठीक है ना? कहने का क्या मतलब है कि इस प्रकार जन्म के कष्टों के साथ साथ हम बढ़ते जा रहे हैं और वैवाहिक जीवन में भी कष्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। फिर 30-35 के बाद एक अलग से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी। अभी तो लाइफ का 30-40% बीता है और उसके बाद अलग टेंशन क्या है? हर व्यक्ति चाहता है मैं जवान रहूं, सुंदर रहूं, मेरे बाल काले रहें, मेरे 32 के 32 कहां रहें? मुंह में रहें, मेरी आंखें ठीक रहें, कान ठीक रहें। कान खराब हो जाते हैं, घर में रोज नए चुटकुले बनते हैं। सुन रहे? बोला कुछ, सुना कुछ। तो इस प्रकार वृद्धावस्था की दहलीज पर कदम रखा जाता है। अब अधिक समय टीवी से हटकर शीशे के सामने रहना पड़ता है, पार्लर में भीड़ बढ़ने लगती है, लोग जिम जाना, सुबह सुबह वॉक करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग थोड़ा सा और कुछ समय तक क्या करें, जवान रहें, ताकि हम लोग जो पैसा कमाया है, जो ये सब किया है, थोड़ा इंजॉय तो कर सकें। अभी तो भागने भागने में लगा दिया। तो वृद्धावस्था से डर लगता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियां बढ़ने लगती है। आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, डॉक्टर कहता है यही नहीं खानी अब, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। हालत ऐसे कर देते हैं कि जैसे व्यक्ति बस एक पैर पे खड़ा है, बस पूरा जीवन मेहनत करी धन कमाने के लिए, अब वो धन बांटा जा रहा है ठीक रहने के लिए। वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बस के दुख, और उसके बाद परिवार में उसी व्यक्ति की हालत एक बूढ़े बैल की तरह हो जाती है या उस गाय की तरह जो दूध नहीं देती। तो क्या करते हैं ऐसे बैल को या गाय को? या तो स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, कसाई घर में, या फिर कहीं खूंटी में बांधकर साइड में रख देते हैं। खबरदार कुछ बोले तो, ये खाना आ रहा है ना सुबह शाम, खाते रहिए, नहीं तो जाइए वृद्धाश्रम। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको। बच्चा देखता है, माता पिता से सीखता है, वो बड़ा होता है, उसकी भी शादी होती है और वो भी अपने माता पिता को वही गिफ्ट देता है। और इसके अलावा फिर वृद्धावस्था में बढ़ने वाली बीमारियां, हम केवल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसी लाइफ को जीते जीते जो राग द्वेष प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग उसकी मत भिन्न लगते हैं, शक्लें पसंद नहीं आती हैं, बॉस की बातें पसंद नहीं आती हैं, लेबर के साथ झगड़े होते हैं, आसपास रिलेटिव्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ पा रहे हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो हर एक जगह चल रही है, बचपन से लेकर एंड तक सबके साथ ही है। और फिर वृद्धावस्था में अंतिम समय में फिर वो मृत्यु का इंतजार करता है। कि कब आ जाए, कब मैं जाऊं, बस बहुत हो गया, देख लिया ये जीवन। और कईयों में अभी भी जीने की आस होती है, तो वो अभी भी जो है प्रयास करते हैं कुछ और दिन, कुछ और टाइम हो जाए, अभी भी इस भौतिक जगत को और भोगना था मुझे, और भी कुछ करना था, मेरी और भी प्लानिंग्स थी, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, अमेरिका से डॉक्टर मंगाइए, नो प्रॉब्लम, चाहे वो अमेरिका का सबसे बेकार डॉक्टर हो, अमेरिका से है। जैसे होता है ना, यहां से कोई भी थोड़ा बहुत हाथ खोलना जान जाए वो अपने को योगा गुरु कहकर अमेरिका पहुंच जाते, कहते जो इंडिया से है, इंडिया से योग गुरु है, जॉब लग जाती है। उसी तरह वहां का कोई कैसे भी डॉक्टर हो, बस अमेरिका से आए, शायद ये ठीक कर देगा। पैसे की चिंता मत करो, जितना मर्जी पैसा लो और मुझे केवल ठीक कर दो। वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। किसके हाथ में है? तो इस प्रकार जब अंतिम समय आता है व्यक्ति का, तो बताते हैं उसका पूरा जीवन जिन कामों में लगा था उसको सारी चीजें याद आती है। मृत्यु के जितना ज्यादा नजदीक जाता है उसके लिए और भयावह होती जाती है सारी चीजें। 40,000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे तो इतना दर्द होता है शरीर को त्यागते समय। जरूरी नहीं कि करहाएगा चिल्लाएगा, नहीं, कई बार तो मल मूत्र के रास्ते से प्राण त्याग दिए जाते हैं। और पूरा जीवन क्योंकि इस देह से आसक्त था, परिवार से आसक्त था व्यक्ति, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, उन विचारों को दिमाग में रखा, तो यम यम वापि स्मरण भावा त्वजति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविक। भगवान कृष्ण 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं कि मृत्यु के समय जब व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है, जो उसकी मेंटेलिटी या कॉन्शियसनेस रहती है, चेतना उसकी जो रहती है, या जो इच्छाएं उसकी समय रहती है मन में, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं उस व्यक्ति को वैसा वैसा शरीर प्रदान करता हूं अगले जन्म में, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। अब इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ड्रेस चाहे कोई भी हो, क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपने जब कभी सोचा बच्चों ने कि मैं फर्स्ट पोजीशन लाऊंगा, तो उसने ये थोड़ी सोचा था कि मैंने ये ड्रेस पहनी होगी, या जिस दिन उसने सोचा कि मैं ये खाने जाऊंगा तो उसने ये थोड़ी सोचा मैं ये पहनकर जाऊंगा। उसी तरह जब हमारी वो इच्छा पूरी होनी है तो उस समय शरीर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस इच्छा को पूरे करने का आनंद दूसरी योनि में मिलेगा। समझ पा रहे हैं? कोई व्यक्ति चाहता है मेरे पर प्रॉपर्टीज हो और उन इच्छाओं के साथ मर जाता है, तो हो सकता है उसका शरीर कल को बदल जाए, आत्मा तो वही रहेगी, मन बुद्धि अहंकार वही रहेगा, उसका शरीर चेंज हुआ, लेकिन वो व्यक्ति पता चले जंगल में पैदा हो गया, सारे 500 एकड़ 600 एकड़ का जंगल है उसका अपना, कहीं भी घूमे कुछ भी करे कोई पता नहीं। समझ रहे? तो इस प्रकार ये जीवात्मा जो है इस संसार में पहले ही दिन से लेकर मृत्यु के अंतिम समय तक क्या करता है, संघर्ष करता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट उसको होते हैं, और हमको लगता है हे भगवान उठा लो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, जिन लोगों ने पाप पूर्ण कार्यों में अपना जीवन व्यतीत किया है, शास्त्रों के विपरीत कार्य किए हैं, उनके लिए स्पेशल पुलिस आती है, इस लोक के नहीं, आपके पड़ोस के एसएचओ से नहीं, मतलब स्टेशन से नहीं आती कि जहां पैसे दो और कहो जी मेरे जानकार थे मुझे थोड़ी ले जाएंगे। ये आते हैं कौन से स्पेशल डिपार्टमेंट से? यमराज के लोग से आते हैं, 3 कांस्टेबल। बाल इनके खड़े रहते हैं लोहे की तरह, कोई जेल वेल नहीं लगाते ये लोग, हाथ में हंटर रस्सियां बांधने के लिए। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपना आहार निद्रा भय मैथुन ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग करने में ही व्यतीत कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी उन्हीं कामों में लगाया जिसमें दूसरी योनियों में सब जीव करते हैं, खाने की चिंता, खाना, मैथुन की चिंता मैथुन, सोने की चिंता सोना, अपनी सुरक्षा की चिंता अपने को सुरक्षित करना। इसी चार कामों में अगर मनुष्य भी अपना जीवन लगाता तो पशु के समान है, और ऐसे पशु को जिसे मनुष्य शरीर मिला था उसका सदुपयोग न करके उसने इंद्र तृप्ति करी, नियमों को तोड़ा, शास्त्रों की अवहेलना करी, इंजॉय करने का प्रयास किया, सो कॉल्ड इंजॉय, खाओ पियो ऐश करो की मेंटेलिटी, कल किसने देखा है। हाँ, तो ऐसे सारे लोग उस कल में यम के दूत उसको खींच के निकालते हैं उसके शरीर से, उसके सटल बॉडी को, तुरंत उसको एक यातना नाम का शरीर देते हैं और फिर उसको घसीट के ले जाते हैं कहां, यमलोक, नरकों की तरफ। ये जो रास्ता है बताया जाता है कई हजार, सॉरी लगभग 972 मील लंबा रास्ता होता है, और उस रास्ते में रेत ही रेत होता है, और सूर्य की रोशनी से वो इतना ज्यादा तप रहा होता है कि उस व्यक्ति को जब वहां से ले जाते हैं तो उसके पैर जलते हैं, तो भागता है, कहां रखूं पैर, हर जगह गरम गरम, रुक नहीं सकता क्योंकि वो पीछे से हंटर मारते हैं उसको खूब तेज तेज। ये डरा नहीं रहे हम आपको, मनोहर कहानियां नहीं सुना रहे आपको, ग्रह शोभा की कोई कहानी है सब वो नहीं है, ये चंपक वक्पक श्रीमद भागवतम के पंचम स्कंद में 28वें उसमें लगभग आखिरी ही अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है कि भाई इस्कॉन वाले डराते हैं, इस्कॉन वाले नहीं डराते, डरा नहीं रहे हम किसी को, हम तो बता रहे हैं, लोग हाथ देख के बताते हैं, हम वैसे बता रहे हैं जिन्होंने अपने समय ऐसे व्यतीत किया है कहां जाएगा। आपसे डरो चाहे नहीं डरो, निडर होके करो तो भी वहीं जाना है, डर के करो तो भी वहीं जाना है, मान के करो तो भी वहीं जाना है, ना मान के करो तो भी वहीं जाना है। तो इस प्रकार जब लोग यम की दूत आते हैं उसको लेके जाते हैं, जिसने जीवन भर शास्त्र के विपरीत जिया, जो व्यक्ति अवैध संबंध रखे, मांसाहार इत्यादि किया, नशा इत्यादि किया, भगवान का नाम कभी भी नहीं उसने जपा, ऐसे लोगों को खींच के ले जाते हैं वहां पर, कुत्ते पीछे पड़ा दिए जाते हैं, उसको काटते हैं, भागता है वो उड़तेज, कहीं पर भी प्याऊ नहीं लगा होता रास्ते में कि पानी पी लूं थोड़ा सा, कोई रेस्टिंग शेड नहीं है कि थोड़ी छाया मिल जाए, कहीं लेट जाऊं, कहीं ऐसा नहीं, भागते रहो बस। इतनी बुरी हालत हो जाती है उसकी कि पूछो मत। अच्छा, ये अभी जर्नी जो है वहां पहुंचने की है, कहां ये कष्ट तो वहां के रास्ते के कष्ट हैं, ये अभी तो वो जो कष्ट वहां पर मिलते हैं, कभी वैसे पढ़ लेना आप लोग, 5वां स्कंध है भागवतम का, हमने नहीं लिखा, ये जो 18 पुराण हुए हैं उसमें ये भागवत पुराण अमल पुराण कहा गया है, जो व्यास देव ने जिसकी रचना की है, नारद मुनि जी ने कहा कि आप इसकी रचना करो, और उन्होंने रचना की इसकी, सारी चीजें पहले ही लिखती, तो पढ़ना चाहिए। कई बार लोग जब शरीर त्याग देते हैं तो मरने के बाद उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, वहां लिखी होती है सारी चीजें, जब गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा होता है तो सब लोग अपनी बातों में लगे होते हैं, उधर कौन सुने, गरुड़ पुराण सुनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। एक बार एक डॉक्टर ने सुन लिया, उसके पिताजी का देहांत हुआ था, तो जब उसने पढ़ा सारा मेडिकल साइंस की बात हो रही है कि माता के गर्भ में शिशु कैसे कष्ट पाता है, कौन से महीने में क्या होता है, किस महीने में उसके हाथ आते हैं, किस हाथ महीने उसके पैर आते हैं, कहते इस छोटी सी पुरानी सी किताब में ये पंडित ये सब कैसे पढ़ रहा है, ये कहां से आया इसके अंदर, ये तो हमने अपने उसमें पढ़ा, अपने सिलेबस में पढ़ा सारा कुछ, अपने मेडिकल रिसर्च में पढ़ा है सब कुछ, और हमने देखा ये सारा का सारा अल्ट्रासाउंड मशीन से ये सारी चीजें हमने देखी कि ऐसा डेवलप होता है बच्चा। वो अगले दिन ही आ गया मंदिर, मुझे लाइफ नंबर बना लो अपना, मैं जानना चाहता हूं धर्म में क्या है, ये चीजें कैसे लिखी गई उसके अंदर, ये आज नहीं लिखी, ये किसी डॉक्टर के पास जाकर थ्योरीज नहीं लिखी गई शास्त्रों में, ये हजारों लाखों साल पहले शास्त्र दे दिए गए थे, ये उसमें लिखा हुआ है। इस प्रकार अंतिम समय में जब उसको वहां ले जाया जाता है तो अभी नरकों को तामिस्र नाम का नरक है, रौरव नाम का नरक है, जहां पर रेरु नाम का एक खतरनाक जीव है, वो काटता है उसको, भागता है, सबसे पहले उसकी आंखें निकाली जाती हैं और फिर उसको मारा जाता है। तो भागना चाहिए ना कहने की, तो भागता है, कहीं ना कहीं गिरता है, ऐसे खतरनाक यातनाएं दी गई है। एक एक पाप की अलग अलग सजा। आपको ग्यारह सौ फंस गए शनिवार को आगे, एक बार क्या हुआ श्रीमद् भागवतम में ही चर्चा है इसी स्कंद में कि अजामिल नाम का एक बहुत सुंदर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। तो एक बार जंगल में गए कुछ लकड़ी लेने के लिए, तो देखा जंगल में ही एक वैश्या और एक व्यक्ति जो है शराब में धुत होकर आपस में आलिंगन कर रहे हैं। तो उसकी बार बार नजर वहां गई, बार बार उसने देखा, तो देखते ही वो आसक्त हो गया उस दृश्य से, उस वैश्या से, अपनी सुंदर पत्नी बच्चों को सबको त्याग दिया उस वैश्या के चक्कर में और अपने घर का सारा सामान बेचकर उसको खुश करने का प्रयास करता। खत्म हुआ सामान तो लोगों को पकड़ता, उनको लूटता, उनका पैसा जो है उसको देता, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, लोगों को मारने पीटने लगा। इतने पाप किए उस वैश्या के लिए, पूछो मत। और फिर उससे 10 पुत्र भी हुए उसको, और 88 वर्ष की उम्र में जब उसका अंतिम समय निकट आया तो सबसे छोटा पुत्र जो कि लगभग 2 या 3 साल का था, उसका नाम था नारायण। तो नाम लेता था, नारायण बेटा, नारायण कहां हो, इधर आओ। तो नारायण शब्द बार बार उच्चारण करता था। भगवान नारायण की बात नहीं हो रही यहां पर, अपने छोटे बच्चे का जिसका नाम नारायण रखा गया था उसकी बात। तो जब उसका अंतिम समय आया और वो तीनों कांस्टेबल आए यमराज के, तीनों दूत खतरनाक भयावह, उनको देखकर से चीखें निकल गई, जोर से चिल्लाए नारायण नारायण, अपने बच्चे का नाम लिया। जैसे ही वो उसको पकड़कर खींच रहे थे, उसके शरीर को, सूक्ष्म शरीर को निकाल रहे थे, आत्मा को उसके शरीर से, उसी टाइम 4 विष्णु दूत 4 भुजाओं में वहां पहुंच गए और उन्होंने यम की दूतों को रोक दिया, स्टॉप, आप इसको नहीं ले जा सकते। तो क्यों नहीं ले जा सकते? पहले तो उनकी तारीफ थी, तुम कौन हो, इतने सुंदर दिव्य पुरुष कहां से आए हो, लेकिन हमें क्यों रोक रहे हो? ये तो हमारा कर्तव्य है कि जिसने भी पाप किए हैं उसे नरक जाना ही पड़ता है। कहते हो सकता है तुम्हारा धर्म यह हो, लेकिन हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरा जन्म पाप किए हैं लेकिन अंत समय में उसने भगवान का नाम ले दिया तो सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम लेने से सारे पाप समाप्त। ऊपर चित्रगुप्त जो है अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, उसका नाम डाला, देखा रहे इसे जीवन भर पाप ही पाप किए थे, लेकिन केवल भगवान के नाम लेते समय अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। भगवान कह रहे हैं 5वें श्लोक में 8वें अध्याय के कि जो शरीर को छोड़ते समय मेरे नाम को उच्चारण कर लेता है वो मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करता है, मेरे ही धाम को प्राप्त करेगा। अभी हमको छूट मिल गई, पाप जितने मर्जी करो लेकिन आखिरी में आपको। कथा शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि वो व्यक्ति ब्राह्मण था और वेदों का अच्छा अध्ययन किया हुआ था, नारायण नाम की शिला उनके घर पर थी, उसकी पूजा इत्यादि होती थी। बाद में गलत संगति के कारण उसके साथ ये हुआ, लेकिन हमारा तो केस ही कुछ और है। हम बचपन से ही कई तरह के पापों में लिप्त हो जाते हैं कई बार, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचो कि ठीक है खूब पाप कर लें फिर जब मरने होंगे तो एकदम बोल देंगे हरे कृष्णा और बच जाएंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंतिम समय में नाम निकलवाने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ पता नहीं कब व्यक्ति कौन कहां से कैसे प्राण त्याग दे, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो हर समय भगवान के नामों का जप करना शुरू करे। क्योंकि हम लोग जिस प्रकार शास्त्र में बताया गया कि अगर किसी जंगल में आग लग जाए तो आग लगने से पूरा का पूरा जंगल राख हो जाता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है फिर से उस जंगल के अंदर पौधे पेड़ वृक्ष उगने लगते हैं। उसी तरह बताते हैं कि अगर हम कुछ रिचुअल करें, गंगा स्नान कर लिया, कुछ दान दे दिया, कुछ प्याऊ खुलवा, कुछ पायस एक्टिविटीज कर लें या यज्ञ इत्यादि कर लें और नाना प्रकार के अनुष्ठान करके अपने सारे पापों को समाप्त कर दें, मैं तो गंगा नहाया जी, मेरे सारे पाप खत्म, अब नए तरीके से करूंगा, नहीं चलेगा। क्योंकि इन नदियों में स्नान करने से पाप तो समाप्त होते हैं लेकिन पाप करने की वृत्ति टेंडेंसी समाप्त नहीं होती, फंस जाएंगे दोबारा। जिस प्रकार जंगल के सारे वृक्ष राख हो जाते हैं अग्नि से, लेकिन वर्षा ऋतु आते ही फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम लोग कुछ रिचुअल करके अपने सारे पाप समाप्त भी कर दें लेकिन जैसे ही वातावरण फेवरेबल होगा पाप करने के, इच्छाएं अंदर से फिर आएंगी और हम लोग फिर से पापों में रत हो जाएंगे, होता ना, फिर माफी मांगते रहते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग भगवान के पवित्र नामों का जप शुरू कर दें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आप हैरान होंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि जिन शब्दों का प्रयोग करके हम लोग बता रहे हैं कि व्यक्ति कौन कौन से नर्क में जाता है, आप कईयों को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि हाँ मेरे से एक आधा नियम फॉलो नहीं होता या दो नहीं होते चारों नहीं होते, मेरे तो 100% टिकट कन्फर्म है। कहां का, मुझे कौन बचाएगा, कन्फर्मेशन आ गई है, वेटिंग भी नहीं है। हरि नाम बचाएगा। हम लोग अगर नियमित रूप से भगवान के पवित्र नामों का जप शुरू कर दें, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दें, भक्तों का संग करना शुरू कर दें, तो धीरे 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 हमारी पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाए। कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हम माला को तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक हम लोग सारे के सारे रूल्स फॉलो करने ना लग जाए, या मैं अभी ये खाता हूं मुझे ये आदत है, मैं वो पीता हूं मुझे ये आदत है, तो मैं कैसे जप सकता हूं भगवान के नाम। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार व्यक्ति कहे जब तक मैं पूरी तरह ठीक ना हो जाऊं तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, ठीक होने के बाद डॉक्टर के पास किस लिए जाना। तो इसलिए सभी लोग बीमार हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पाप कर रहा है और जो बिल्कुल नहीं कर रहा वो भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, जब वो जल पीता है तो बैक्टीरियाज मरते हैं, जब शरीर को नहलाता है हाथ को रब करता है बॉडी तब कई कीटाणु मर जाते हैं बैक्टीरियाज मर जाते हैं, जब श्वास अंदर ग्रहण करता है इनहेल करता है तो कई जीव अंदर जाके मर जाते हैं, जब वो चलता है तो पैरों के नीचे आके कई मर जाते हैं, जब घर में खाना बनाने के लिए अग्नि जलाते हैं तो कई बैक्टीरिया हवा में जो वो मर जाते हैं, तो कई प्रकार के पाप हमें लगते हैं। तो जो कुछ नहीं कर रहा वो ये तो कर रहा है। इसलिए अगर हमारे अंदर कहीं कोई कमी है भी गलती है भी तो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से एक माला या दो माला से अपना जीवन शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही वर्षों में और या कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति सी आ जाएगी परिवर्तन की। ऐसी क्रांति विदेशों में लेकर आए श्रील प्रभुपाद जी, जहां पर के लोग हर प्रकार से नगण्य थे, हर प्रकार से नियमों को तोड़ते थे, कृष्ण और राम का तो नाम भी नहीं सुना था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शरण में आने से, हरे कृष्ण महामंत्र के शरण में आने से इतने शुद्ध हो गए कि आज पूरे विश्व को शुद्ध कर रहे हैं लेक्चर्स के द्वारा, अपने संघ के द्वारा वही लोग। तो एक जीवन में हम देख सकते हैं लोगों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो हम तो भारतवर्ष में पैदा हुए, कंडीशन भी फेवरेबल है, क्या करना है, खाली भगवान के नामों का जप शिला बहुबा जी ग्रंथ का अध्ययन और कृष्ण प्रसाद का सेवन। इतना कार्य करने से ही हमारी जो पाप करने की वृत्ति है, हमारे अंदर क्रोध है, जो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है लोगों के प्रति, जो हम लोग छोटी छोटी समस्याओं से डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस संसार के जितने शुरू से लेकर अंत तक के कष्ट बताए, वो सारे के सारे कष्ट भक्त को कष्ट नहीं लगते। भगवान ने कहा दुखालय शाश्वतम, तो भगवान के भक्तों के लिए दुखालय नहीं है, उनके लिए सुखालय है। तो सारे के सारे विपरीत समस्याएं या विपरीत कंडीशंस भी, जहां परिस्थितियां भी फेवरेबल हो जाती हैं, और भक्त लोग एंजॉय करते हैं इस लाइफ, हमेशा आनंद में रहते हैं। इसलिए कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। जो लोग माया के दास हैं, जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी लोभ को पूरा करना चाहते हैं, मोह से आसक्त हैं, ग्रस्त हैं लोग आसक्तियों के कारण, तो उनको उतना दुख होगा, उतनी समस्याएं होंगी, उतनी परेशानियां होंगी जगत में। और जो व्यक्ति जितना डिटैच्ड है, अनासक्त है, कार्य करता है, ड्यूटीज देता है, लेकिन एज ए ड्यूटी करता है, उससे आसक्त नहीं होता, भगवान के नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, दर्शन करता है, कथा का श्रवण करता है, अध्ययन करता है, कितना समय लगाना है इसमें, आधा घंटा, एक घंटा शुरुआत में, धीरे धीरे समय को बढ़ाएं, अपने आप आनंद आएगा। और फिर एक दिन ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जब हमको ये कष्ट, ये समस्याएं और कष्ट ना लगकर आनंद के स्रोत बन जाएंगे, कृष्ण को स्मरण करने की एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अभी जिस पर कष्ट आते हैं तो हम कष्ट को देखते हैं, दुखों को देखते हैं कि हे ये क्या हो गया, लेकिन जब भक्त बन जाएंगे तो भगवान की ही योजनाओं के तहत होते हुए इन सब कामों को देखेंगे और हमेशा आनंद में रहेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न नहीं है? सब लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? वेरी गुड। कहां जाना है? हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। इस जीवन से हमें चाहिए क्या? हम सब लोगों को चाहिए कि ये जो समस्याएं, दुख और तकलीफें आ रही हैं, ये इस कारण से आ रही हैं क्योंकि हमारा जन्म हो जाता है, और जातक से ही ध्रुवम जन्म मृत्यु से चय, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात फिर जन्म निश्चित है, और जब जब जन्म होगा तो ये साइकिल चलता रहेगा कष्टों का। कौन सा कष्ट? जन्म के कष्ट, बुढ़ापे के कष्ट, बीमारियों के कष्ट और मृत्यु के कष्ट। इसके अलावा दूसरे कष्ट आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, नाना प्रकार के कष्ट हमेशा होंगे, लेकिन हमें अगर इन कष्टों से हमेशा के लिए निजात पाना है तो कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शरण में जाने से भगवान अपने भक्तों को इन सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं। और यत गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम, उस धाम में ट्रांसफर कर देते हैं अपने, उस धाम में बुला लेते हैं, जहां पर जाने के बाद दोबारा किसी का जन्म इस भौतिक जगत में नहीं होगा। और अगर जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा भी नहीं होगा, बीमारियां भी नहीं आएंगी, मृत्यु भी नहीं आएंगे, वो सारे कष्ट जो हमने भी बताए वो फिर फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब बताओ कितने लोग जाना चाहते हैं भगवान के धाम? वेरी गुड। कितने लोग तैयारी करने के इसी जन्म में जाएं? वेरी गुड। कितने लोग चाहते हैं माला ना करें, संग ना करें, फिर भी जाएं? बिना मेहनत करें तो रोटी भी मुंह में नहीं आएगी। यहां कौन रहेगा? हाँ सही बात, प्रभु जी कह रहे हैं कि सारे ऊपर चले गए तो फिर यहां कौन रहेगा? इधर कौन देखेगा? अच्छा प्रश्न, नहीं कितनी चिंता है इनको देखो। तो देखिए सृष्टि जो है ये भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। भगवान कह रहे मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य तथा चराचरम, कि मेरी ही अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है। जैसे हम तिहाड़ जेल गए लेक्चर देने के लिए, तो वहां पर अगर कैदी बात कर रहे हैं, यार अगर सारे बाहर चले जाएंगे तो अंदर कौन रहेगा? तो ये भौतिक जगत एक जेल के समान है, जिन लोगों ने नियमों को तोड़ा है वो सब लोग यहां पर सजा भुगतने के लिए आए हैं। जन्म के कष्ट, बुढ़ापे के कष्ट, बीमारियों के कष्ट, मृत्यु के कष्ट। तो यहां से निकलने में बुद्धिमानी है, और निकलेंगे कैसे उसका मार्ग बता दिया गया है। जिस प्रकार एक क्लासरूम में टीचर एक है, 40-50 स्टूडेंट्स हैं, सारे फर्स्ट नहीं आते, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ एवरेज पास होते हैं, कईयों के मोर देन 80% होते हैं, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही लोग आते हैं, टीचर एक ही है। उसी प्रकार इस हॉल में बैठे हुए भी लोग हैं, लेक्चर एक ही दिया गया, ऑडियंस अलग अलग तरह की है, अलग अलग कंडीशन की, अलग अलग विचारों की, समझ सबको अपने हिसाब से आएगा। कुछ लोग कहेंगे अरे बड़े लेक्चर सुने हैं, ये डरा दिया उन्होंने, ऐसा थोड़ी होता है, ये डराने वाली बात है, चलो एक पैक लगाएं और सो जाएं। कुछ लोग ऐसे होंगे, बात तो ठीक थी यार, डर तो बड़ा लग रहा है, क्या नाम क्या मंत्र था वो, हरे कृष्णा हरे राम, क्या था वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करना चाहिए, कल से करूंगा, आज नहीं, अच्छा दिन, मेरा बर्थडे कब आ रहा है, 2 महीने तब करूंगा। एक माला दो माला शुरू करी, क्या मैंने सर पे ले लिया, अब छोड़ो, देखेंगे ना जहां जाना, सब जा तो रहे हैं, मेरा पड़ोसी भी नर्क जा रहा है, ये भी जा रहा है, मैं यहां क्या करूंगा, मैं भी नर्क चला जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, हाँ बात तो देखो ठीक है, कितने कितने जन्म हमने जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु में निकाल दी, हर जन्म में यही सोचा खाओ पियो ऐश करो, और उसकी वजह से इतने इतने कष्ट हमें सहने पड़े। थैंक गॉड आज लेक्चर में आ गया, समझ आ गया कुछ, आज से ही मैं भगवान के नामों का जप करूंगा, ग्रंथों का अध्ययन करूंगा, इसी जीवन को अपना अंतिम जीवन समझकर अपने कार्यों को पूरा पूरा निभाते हुए अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, सबको धाम लेने जाने की कोशिश करूंगा, सबको भक्त बनाऊंगा। तो तीन कैटेगरी के लोग, तो आप देख लीजिए आपको कौन सी कैटेगरी में रहने, ठीक। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान की चिंता यही है कि सारे के सारे मेरे पास कैसे ऑफिस लौटे। जिस प्रकार हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता, हर व्यक्ति बॉर्डर पे लड़ाई नहीं करता, उसी प्रकार हर व्यक्ति भक्त भी नहीं बनेगा। भगवान चाहते हैं भक्त बने, हम भी चाहते हैं भक्त बने। तो देखिए ना, पूरी दिल्ली में 1.5 करोड़ आबादी है, यहां 150 लोग बैठे हुए, तो इनकी चिंता हो रही थी आपको, उनकी चिंता हो रही। और किसी को प्रश्न है क्या? बैठ जाइए। मन क्यों भटकता है, स्थिर क्यों नहीं रहता? हमारा मन, शास्त्र में कहा गया मन एव ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, यह मन ही हमारा है बंधन का और मुक्त होने का कारण है। बंधाय विषय और संगो, अर्थात ये हमको बांधता है, बांधता मतलब इसकी वजह से नाना प्रकार की योनियां बार बार लेनी पड़ती हैं। क्यों? जब हम विषयों के संग में रहते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट के संग में रहते हैं, अर्थात इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, अपने मन से सारे जीवन को जीना चाहते हैं, तो जब तक ये भौतिक जगत में लगा रहेगा तो यही के बारे में सोचेगा, यही की इच्छाएं होंगी और इन्हीं को पूरा करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इसी मन को उन सब कामों से हटाकर भगवान के दर्शन करने में, भगवान की कथा सुनने में, जिह्वा से भगवान का प्रसाद लेने में, हाथ से भगवान की माला करने में, भक्तों का संग करने में लगा दिया, श्लोक याद करने में, कथा पढ़ने में, तो मन को एक एंगेजमेंट मिल गया, लेकिन स्पिरिचुअल एंगेजमेंट मिल गया। तो उससे हमारा मन शुद्ध होगा। जब संसार में लगेगा तो बद्ध होगा। पूरा दिन 24 घंटे में हम लोग 24 के 24 घंटे केवल उन 5 घंटों को छोड़ के 6-7 घंटों को छोड़ के जब हम सोते हैं, 18-20 घंटे हम लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं, कान खुले रखते हैं, जीवा चलती रहती है, कुछ ना कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ कान से सुनते रहो म्यूजिक वगैरह, और कुछ ना कुछ कई बार देखते रहो उल्टा सीधा। तो जो जो हम देखते हैं वो स्कैन हो जाता है। स्कैन का मतलब समझते हैं, छाप पड़ जाती है हृदय पे, मन पर। और जो जो इंद्रिय हमारी जहां जहां जा रही है, मन उसके साथ साथ चल रहा है। आंख को नहीं मालूम कि काला है, नीला है, पीला है, लाल है, आंख नहीं देख सकती। इसके पीछे मन है जो फील करता है। समझ पा रहे बात को? आंख आंख को निकाल कर आप बाहर रख दीजिए, ये कुछ देख पाएगी क्या? ये तब तक यूजफुल है जब तक ये शरीर के अंदर लगी हुई है। और इन सेंसेस के पीछे माइंड है, मन। ये मन के पीछे इंटेलिजेंस है। ये सिग्नल इस तरह चलता है, आंख ने देखा, मन पर गया, मन ने इंटेलिजेंस को बोला भाई कौन सा रंग है ये। अगर बचपन में आपको लाल रंग की जगह लाल रंग को कहते कि बेटा इसको पीला बोल, तो आप पीला ही बोलते ना उसको, गलत बोलते उसको। तो आप जब उस रंग को देखते हैं तो आपका मन कहता है ये पीला है। उसी तरह हमारे मन के साथ हमारी इंटेलिजेंस भी रहती है और वो सब चीजों को देखती है, परसीव करती है। तो जब हम लोग स्कैन कर लेते हैं सारी चीजों को, मन तो हमसे अंगेज है हमेशा। तो जब हम लोग आंख बंद करते हैं, दिन में 1 मिनट ही भगवान का नाम बोलता है, या 1 मिनट बस मन लग जाए, कहां लगेगा? 24 के 24 घंटे तो हम लोग पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और जब आंखों को बंद करते हैं तो मन कहता है अरे फिल्म बंद क्यों हो गई, अब क्या देखूं, अब क्या देखूं, अच्छा सुबह क्या देखा था, दोपहर को क्या देखा था, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उस प्रकार के विचारों में भागता है। तो क्या करना चाहिए? स्कैनर बंद रखना चाहिए, आंखें बंद रखिए। नहीं, ये भी नहीं कर सकते, लेकिन इन आंखों को, इन कानों को, इस जिह्वा को स्पिरिचुअल फूड दीजिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। 40-45-50 साल हमने लगा दिए दुनिया के दृश्य देखने में, दुनिया की कथाओं को सुनने में, अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। अब हमको ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का दर्शन करना पड़ेगा, ताकि वो दर्शन, उनके चरण कमल, उनका सुंदर रूप हमारे आंखों में आ जाए। उसको स्कैन कीजिए, ग्रंथों को पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें फिलॉसफी लिखिए, उसको पढ़िए, कथाओं को पढ़िए, उसमें हमारा फिर मन जाएगा। ओहो, क्योंकि जब किताब पढ़ता व्यक्ति के दूसरा कुछ थोड़ी सोचता है, उस समय मन तो वहीं पर होता है ना। तो जितनी ज्यादा देर हम लोग चैंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, तो इन सेंसेस से आध्यात्मिक भोजन अंदर जाएगा, आत्मा का भोजन। तो जब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो धीरे 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 धीरे, कम से कम पहले तो उसी समय में मन को लगाना बहुत मुश्किल होगा, फिर कुछ समय बाद उस समय पे लगेगा, और उसके बाद फिर 24 के 24 घंटे भगवान में रह सकता है सारे कामों को करते हुए। जिस प्रकार अर्जुन भगवान के ज्ञान के बाद, ज्ञान देने के मिलने के बाद युद्ध किया, लेकिन मन और बुद्धि भगवान को अर्पित किए, उनके निर्देशों के अनुसार कार्य किए, अपनी ड्यूटी पालन करता, क्षत्रिय के रूप में लड़ना है तो लड़ रहे थे, एक गृहस्थ के रूप में काम करना है, 8-10 घंटे काम करना है, पैसे लेकर आने, बच्चों को पालना है, पूरे परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन कृष्ण भावना में भावित ढंग से, तो यह आध्यात्मिक गतिविधि बन जाएगी। हम ये नहीं करें सर छोड़ छाड़ के आ जाओ आज, हम ये कह रहे हैं कि इसको आध्यात्मिक बना दीजिए। जैसे जो लाइट हमारे को यहां पर मिल रही है, ये पावर हाउस से करंट आ रहा है यहां पर, इसी लाइट का हम प्रयोग कर सकते हैं पानी को गर्म करने में और पानी को ठंडा करने में, फ्रिज के द्वारा है ना, या हीटर के द्वारा। उपयोग हमें देखना है कि किस समय किसकी क्या जरूरत है। उसी प्रकार इन सेंसेस का प्रयोग हम गलत काम करके अपना जीवन खराब भी कर सकते हैं, और इन्हीं सेंसेस का और मन का इस्तेमाल भक्ति में लगाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ठीक है, तो मन का कंट्रोल हम कर सकते हैं। मना का मतलब है, मंत्र का मतलब त्रायते इति मनः, मंत्र के द्वारा हम मन को तार देते हैं एंजाइटी से, दुखों से, परेशानियों से। तो जितना ज्यादा हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करेंगे तो हमारा मन कंट्रोल होना शुरू हो। ठीक है, तो इसकी हेल्प लीजिए। हरे कृष्णा, आप सबके प्रसाद की व्यवस्था है तो सब प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्ण।